نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حیات صحابہ کے درخشاں پہلو اس کتاب میں سے آج ہم جن صحابی کے حالات زندگی پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ. عمیر لفظ جو ہے یہ عمر کی تصغیر ہے. عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ وہ ہر لفظ کو جب کسی کو پیار سے بلانا چاہیں محبت سے تو اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بچہ ایک لفظ ہے لیکن کسی کو بڑی محبت سے بلانا ہو تو کہتے ہیں بچہ بچونگڑا, او بچونگڑے کیا حال ہے, کہتے ہیں نا. اسی طرح عربی زبان میں لفظوں کو چھوٹا کرنے کے لیے اس فارم میں لے آیا جاتا ہے, جیسے عمر سے عمیر. پھر اسی طرح آج کے دور میں مختلف قرا جو ہیں ان کے جو نام ہیں حذیفی, شرائم, یہ سارے جو لفظ ہیں یہ تصغیر ہے اصل لفظوں کی. تو یہ ایک محبت کا ایک انداز ہے, تھوڑی سی بات تھی جو شاید آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی. ان کے بارے میں جو قول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, فرماتے ہیں کہ عمیر بن وہب مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, اور اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اس دور میں کس طریقے سے دین کی وجہ سے محبتیں ہوتی تھیں کہ ذرا کوئی دین کا کام کر لیتا تھا اچھا تو لوگ پھر اس کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیتے تھے. دنیا میں آج بھی اس محبتیں ہوتی ہیں, لوگ ایک دوسرے سے دوستیاں قائم کرتے ہیں, لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے سے دوستیاں کریں, محبت کریں اور اسی کے لیے ملیں اور اسی کے لیے بچھڑیں. تو شروع کرتے ہیں ان کے بارے میں. وہب کا لفظ بھی ذرا دیکھ لیجئے, وہب وہبا, اللہ تعالیٰ کا نام ہے الوہاب. تو وہب ایسے جیسے آج ہم کہتے ہیں بخش, اللہ بخش, مولا بخش, تو بخش کا لفظ جو ہے وہ وہب ہی کی طرح کا ہے, یعنی وہاب دینے والا اور وہب جو دے دی چیز. ٹھیک ہے. حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے, لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. یہ کب کی بات ہے, جب یہ مسلمان نہیں تھے بدر میں, یہ کافروں کی طرف سے گئے لڑنے کے لیے, اور جب حالات پلٹے اور سب کو معلوم ہے کہ جو اس وقت کنڈیشن ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کے بیٹے تو وہیں رہ گئے تھے لیکن یہ بچ کے آگئے تھے. حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان ان کے جوان بیٹے کو باپ کے جرم کی پاداش میں, یعنی اس کی سزا میں یا اس کے بدلے میں سخت سزا دیں گے, کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دردناک تکلیف پہنچاتا رہا ہے. یہاں دیکھیے کہ مسلمانوں نے کچھ کیا نہیں, لیکن کچھ لوگ جب خود دل میں غلط خیالات رکھتے ہیں تو ان کو شک ہوتا ہے کہ دوسرے بھی ہمارے خلاف باتیں کرتے ہوں گے اور کریں گے. ایسا ہی ایک اندیشہ ان کے دل میں بھی تھا, حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی کسی ایک کے بدلے میں دوسرے کو تکلیف نہیں دی. ایک دن صبح کے وقت جب حضرت عمیر رضی اللہ عنہ مسجد حرام میں طواف کعبہ اور بتان حرم سے برکت حاصل کرنے کے لیے, بتان یعنی بت کی جمع, حرم کے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئے, وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ صفوان بن امیہ خطیم کے ایک جانب بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس آ کر کہنے لگے آقائے قریش صبح و بخیر. یہاں دیکھیے کہ حضرت عمیر اس وقت تک مسلمان نہیں تھے, اس کے باوجود خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں. کیوں جاتے تھے؟ دو لفظ تھے, آپ نے غور کیا ہوگا, طواف کعبہ, یہ کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے کرتے تھے. اور بتان حرم, یعنی اس میں جو انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے ان سے خیر لینے کے لیے حرم کے اندر گئے. اور وہاں ان کا ایک اور دوست تھا صفوان بن امیہ, یہ بھی کفر پہ ہی تھا. یہ دونوں یعنی وہاں بیٹھے ہیں اور حطیم کے ایک جانب, حطیم کون سی جگہ ہے؟ جو حرم میں ایک سائڈ کو بڑی بھی جگہ ہے اوول شکل کی, اصل میں یہ حرم ہی کا حصہ ہے, لیکن قریش نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد اس خانہ کعبہ کو دوبارہ رینوویٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال کمائی استعمال کریں گے. یعنی اس دور میں بھی اب دیکھیے مشرک ہونے کے باوجود یا دین میں بہت سارے اضافے کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں یہ چیز تھی, اور حق حق ہوتا ہے, अच्छे और बुरे का फर्क जो है अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में डाल रखा है। तो उस वक्त इन्होंने कहा था सिर्फ रिस्क हलाल ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो माल कम पड़ गया तो उन्होंने बजाय इसके कि उसमें कुछ पल्यूट कर देते, कोई और चीजें डाल देते, उन्होंने उसी के ऊपर इक्तफा किया और उसको वहीं तक छोड़ दिया। अब इसमें कितनी ही बातें मिल सकती हैं। मसलन आप देखिए कि एक तो ये कि उस दौर में फिर हराम ही माल ज्यादा था, तभी तो एक कमरा नहीं बना सके। यानी गौर कीजिएगा उस दौर की अखलाकी हालत जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कि क्या हालात होंगे कि सिर्फ एक कमरा बनाने के लिए लोगों के पास रिस्क हलाल नहीं था, तो बाकी बातें क्या होंगी। फिर दूसरी चीज देखिए कि इन अल्लाह बालिग अमरी, अल्लाह अपने काम करवा के रहता है। ये हतीम का हिस्सा छूट जाना क्यामत तक के आने वाले लोगों के लिए एक खुशकिस्मती की बात बन गई कि आज के दौर में भी आप देखिए तो बहुत सारे लोग अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इजाजत दी जाए तो मेरे हले लोग वहां से निकले ही ना, होटल ही ना लें, कमरे ना लें, वहीं बैठे रहें। लेकिन कुछ खास हसरात जाते हैं और कुछ खास वक्तों पे खुलता है, तो वो लोग जो बेचारे आम दर्जे के होते हैं वो इस नेमत से महरूम ना रह जाएं। इसीलिए नबी सल्लम की सुन्नत भी मिलती है और इसकी रग़बत भी दिलाई जाती है कि मौका मिल जाए अगर तो हतीम में दो नफिल पढ़ लेने चाहिए। तो वो ऐसे ही कि जैसे खाना कअबा के अंदर जाके नफिल पढ़ने वाली बात है। तो यहाँ से ये पता चला कि अल्लाह ताला कभी एक काम में एक तरह से खैर कर देता है और कभी उसमें किसी दूसरे के लिए वो चीज़ किसी और रंग में होती है। फिर इसके बाद आगे क्या हुआ, उसने कहा कि आकाए कुरैश सुबह बखैर। यहाँ भी गौर कीजिएगा सलाम करने का अंदाज क्या है, सुबह बखैर। ये उस दौर में सलाम करने का एक अंदाज था। मैं चाह रही हूँ कि आज साथ साथ ही हम अमल की बातें लेते रहें, क्योंकि बहुत लंबा नहीं है तो मुमकिन है कि हम इसके साथ ही अमल की बातें लें, क्योंकि नॉर्मली तो मैं पढ़ने के बाद बताती हूँ, तो यहाँ आप साथ साथ लिखते जाइए। अब देखिए कि यहाँ पहली बात है आकाए कुरैश, एक प्रेस्टीज अंदाज है, यानी इससे भी पता चलता है कि उनके जहन कैसे थे, और एक रौनत का सा एहसास मिल रहा है इस बात से कि कुरैश के आका। दूसरा ये है कि सुबह बखैर कहा, इससे क्या पता चलता है कि उस दौर में भी अभी सलाम का रिवाज नहीं था। वो तो उस दौर के लिए ठीक था, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ जगहों में देखा गया कि आज इतने खूबसूरत कलेमात आ जाने के बावजूद कुछ लोग इसी तरह से सलाम करते हैं, सुबह बखैर, यानी कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं ना लोग एक दूसरे को, भी नहीं कहना चाहिए। अब ये ऐसे ही है जैसे कोई आज के गुड मॉर्निंग, ठीक है कोई किसी को नहीं जानता वो कौन है उसको गुड मॉर्निंग कह दे, कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन मुसलमान का कलाम जो है वो बहरहाल सलाम होना चाहिए। सुफवान ने भी जवाबन कहा, अबू वहब सुबह बखैर, आए बैठ कर कुछ बातें करें, आपस में बातें करने से वक्त खूब गुजरेगा। ये क्या कैफियत है, मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ खवातीन मस्जिद में जाती हैं नमाज पढ़ने के लिए और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के फिर अपनी दोस्त को कहती हैं कमन पीछे आ जाओ कुछ बातें करते हैं। यानी हर दौर में कुछ ना कुछ बातें तो फिर मिलती जुलती ही रहती हैं लोगों के साथ। हजरत उमैर रजी अल्लाह अन्हो सुफवान बिन उमैया के बिल्कुल सामने बैठ गए और दोनों आपस में मारकाए बदर और इसमें होने वाले अजीम नुकसानात याद करने लगे और इन कैदियों के नाम शुमार करने लगे जिन्हें मुजाहिदीन इस्लाम ने गिरफ्तार कर लिया था, और वो सरदाराने कुरैश को याद करके आंसू बहाने लगे जिनकी गर्दनें मुसलमानों की तलवारों ने उड़ा दी थी, और कलीब कुएं में इनकी लाशों को फेंक दिया था। ये कुएं का नाम है कलीब, यानी ये भी देखिए कल्ब से कलीब तस्गीर है कल्ब की, यानी कोई गहरा कुआं होगा ऐसा तो उसके अंदर उनको डाल दिया था। सुफवान बिन उमैया ने एक लंबी सांस ली और कहा बखुदा अब इनके बाद जिंदा रहने में कोई मजा नहीं। हजरत उमैर रजी अल्लाह अन्हों ने कहा बखुदा आपने बिल्कुल सच कहा। फिर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा रब्बे काबा की कसम अगर मैं मकरूज यानी कर्ज मेरे सर पे ना होता और एयालदार यानी बच्चों वाला ना होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी जाकर कत्ल कर देता। फिर आहिस्ता से कहने लगा मेरा बेटा चूंकि इनके कब्जे में है इसलिए मेरा वहां जाना शुभा पैदा नहीं करे। चंदा का मतलब के बिल्कुल बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना चंद, थोड़ा सा भी शुभा पैदा नहीं करेगा, क्योंकि कैदियों के वरसा की मदीना मुनव्वरा में आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है। तो यहाँ पे पहला बाब खत्म हुआ, इसका उन्वान क्या है, इस्लाम से पहले उमेर की गुफ्तगू। अब यहाँ देखिए कि हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। पहली बात यह है कि बदर के अंदर जो मुसलमानों को फतह हुई थी, हम आज उसको किस रंग से याद करते हैं, और क़यामत तक के लोगों के लिए वो एक फरकान बन के रह गया। इसी से वो लोग नाखुश होते थे। इससे क्या पता चलता है कि एक फरीक की जीत दूसरे की हार होती है। ज़िंदगी में एक असूल बनाइए कि कभी अल्लाह ताला बहुत खुशी भी दे दे, और ऐसी खुशी जो आपको किसी दूसरे के मुकाबले पे मिले, यानी दो के बीच में टाई हो, तो अपनी खुशी पे खुश हों लेकिन साथ साथ दूसरे के गम को भी महसूस करें। बाज़ दफ़ा इस तरीके से आपस में फ़र्क पड़ जाता है मिलने में, रिश्तों में, दोस्तियों में, मोहब्बतों में, कि हम अपनी खुशी में तो खुश हो रहे होते हैं उस, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचते कि दूसरा खुश नहीं। और ये चीज़ें मिलती हैं आला अखलाकी कदरें कब मिलती हैं, जब इंसान अपने आप को बहुत बुलंदी पे कर लेता है, इखलाक की, किरदार की, अमल की। फिर इससे दूसरी चीज़ क्या पता चलती है, वक्त गुजरने के बावजूद भी उनके दिल से उन कुरैशी सरदारों की मोहब्बत और उनके जानने का गम कम नहीं हो सका। तो इससे भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इंसान की मोहब्बतें जिस चीज़ के साथ होती हैं, फिर वो इतनी बड़ी निशानी देखने के बावजूद, यानी हम मुसलमान कहते हैं कि यौमे बदर जो था वो अल्लाह की नुसरत का दिन था, अल्लाह ताला की मदद का दिन था, लेकिन ये अल्लाह ताला की इतनी निशानियां देखने के बावजूद भी मुसलमान नहीं हुए। उनको निशानी क्यों नहीं दिखी? क्योंकि सोच का रुख फर्क था। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अलमर्उ अला दीन खलील ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। फिर उसमें एक और चीज़ देखिए कि किस हद तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में है कि उनको कत्ल करने तक की कोशिश है, लेकिन रास्ते में दो चीज़ें आ गईं जिसको हमेशा अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में कहा कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, फितना बन गई उसकी नज़र से। अगर उसके तनाजर से हम देखा जाए, कर्ज था इसके सर पे, किसी का इसने कर्ज देना था, यानी माली मुश्किल में था, और बहुत सारे बच्चों का इसको फिक्र था, यानी इसका ख्याल था कि मैं अल्लाह के नबी सल्लम को मारने के लिए गुरेज ना करूं अगर मुझे ये दो चीज़ों का फिक्र ना हो। तो इससे भी क्या पता चलता है कि बस दफ़ा इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में उस वक़्त और आज के दौर में उनके लाए हुए दीन की दुश्मनी में हद से बढ़ जाता है, लेकिन उसके रास्ते में अपने ज़ाती नुकसानात का खौफ उसको रोक लेता है, वरना हो सकता है कि इंसान उससे बहुत ज़्यादा बढ़े। और मैं इस वाक्ये को पढ़ रही थी तो मुझे तौहीने रिसालत का लफ्ज़ भी याद आ रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लम के कत्ल की कोशिश, तौहीने रिसालत, और आपके खिलाफ किस तरीके से आप देखिए बातें कर रहे हैं, और गौर कीजिए कर कहाँ रहे हैं बैठ के, खाना काबा में, अल्लाह के घर के अंदर बैठ के उसी के नबी के खिलाफ बातें करने वाले। लेकिन देखिए कि अल्लाह ताला फिर आगे क्या हालात पैदा करता है। सुफान बिन उमैया ने उमैर बिन वहब रदी अल्लाह अन्हु की इस बात को गनीमत समझा और सोचा कि ये मौका हाथ से न जाने दिया जाए। फिर इसकी तरफ पूरे दिल से मुतवज्जो होकर कहने लगे, मैं चाह रही थोड़े उर्दू के लफ्ज़ भी आपको आज बताती जाऊँ। हमा कहते हैं पूरे तन जिस्म, यानी पूरे जिस्म से मुतवज्जो हुए, ये नहीं कि दिल मुतवज्जो हुआ बल्कि आंखें भी उधर लग गईं, कान भी उधर लग गए, पूरा जिसरा कहते हैं फोकस्ड होकर सुनने लगा। उमेर आप इस बात की परवाह न करें, तेरा जितना भी कर्ज है मैं खुद अदा करूंगा, मैं तेरे अहलो याल की जिम्मेदारी भी कबूल करता हूँ, मेरे पास इतना वाफर माल है जिससे इनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। ये पेशकश सुनकर उमैर बोले, इस बात को सीगे राज में रखें, यानी इसको एक्सपोज नहीं करें और किसी को ना बताएं। सुफान ने कहा कि तुम भी ये बात किसी को ना बताना। ये थी एक खुफिया बातचीत, गुफ्तगू जो उन्होंने बैठ के की, और उनका ख्याल था किसी को ना बताना। इसको अनवान क्या लिखिए, तुम किसी को ना बताना, मगर जो हुआ वो सब आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उमैर बिन वहब जब मस्जिद हराम से उठा तो इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गैज़ो गज़ब की आग इसके सीने में शोले भड़का रही थी। अपने इस इरादे की तकमील के लिए, यानी अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए इसने तैयारी शुरू कर दी। इस सफ़र में इन्हें कतन इस बात का अंदेशा न था कि कोई इन पर शक व शुबा करेगा, क्योंकि कुरैश के कैदियों के वो रसा फ़दिया देने के लिए मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। यानी आम हालात में तो किसी को शक हो सकता है कि कोई दुश्मन मुल्क में क्यों आया और कैसे गया, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क की बॉर्डर को क्रॉस करना होता है। तो बिल्कुल उस वक़्त तक मक्का और मदीना की कैफियत इसी तरह की हो चुकी थी कि एक तरफ मुसलमानों की जगह थी मदीना और दूसरी तरफ मक्का काफिरों की तरफ था, तो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना आम हालात में तो नजरों में लोग आते हैं, लेकिन आप देखिए कि मिसाल है कि एक मुल्क में कोई आफत आई हो और लोग उधर से रिफ्यूजीज बन के दूसरे मुल्क में आ रहे हैं, तो फिर उसमें नहीं पता चलता। तो इस वक्त मक्का वालों के कुछ रिश्तेदार जो थे वो कैदी बन के मदीना में मौजूद थे, तो इनका ख्याल था कि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा और इस जाने में चले गए। इस पैराग्राफ का उन्वान लिख लीजिए, इंतकाम की आग सीने में। उमर बिन वहब ने घर आकर बीवी को हुक्म दिया कि मेरी तलवार तेज करो और उसे जहर की पान दो, फिर अपनी सवारी तलब की। जहर की पान दो क्या है कि यानी एक तो लोग तलवार के साथ वार करते थे, लेकिन जब किसी को श्योर शॉट करना होता था कि इस वार से ये जरूर मर जाए, क्योंकि समटाइम तलवार जो है वो ऐसी जगह पे लगती है कि जहाँ लगने से इंसान मरता नहीं है, बाजू पे, हाथ पे, पाँव पे लग सकती है, लेकिन जब किसी को मारना होता था तो ये तलवार का जो आगे वो उसका काटने वाली जगह होती है तो उस पे जहर लगा देते थे, ताकि अगर किसी को सिर्फ टच भी कर जाए तो वो जहर जो है वो जिस्म में उतर जाए। इसी तरह की कोशिशें इन्होंने भी की। ये सवार होकर अपने मिशन की तकमील के लिए गैज़ो गज़ब का तूफान अपने सीने में छुपाए हुए मदीना की तरफ चल पड़ा। उमर बिन वहब ने मदीना पहुँच कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी। बिलाखर मस्जिद नबी के करीब अपनी सवारी से उतरा और मस्जिद की तरफ चल दिया। यहाँ आप फिर इसका उन्वान भी लिख सकते हैं, इस हिस्से का बदतरीन मिशन। अगर यहाँ हम एक लम्हे के लिए रुक के देखें, इसकी कोई ज़ाती गरज नहीं थी, लेकिन दीन से दुश्मनी और अल्लाह के नबी सल्लम की दुश्मनी का जज्बा जो था इसको अपने घर से निकाल रहा है, और किस तरीके से वो गुस्से के अंदर गया हुआ है कि आज मुसलमानों के दिलों में अल्लाह के नबी सल्लम की इतनी मोहब्बत है कि जिसकी वजह से वो आपके दिफा के लिए ऐसे काम कर सकें कि जिससे दुश्मनों के इरादे जो हैं वो आपके खिलाफ जो हैं वो ख़त्म हो सकें। यहाँ देखने की ज़रूरत है, और मैं इसको पढ़ते हुए ये महसूस भी कर रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन हालात में दीन फैलाया। एक तरफ अबू लहब की बेवी उम्मे जमीला है जो आपके लिए लकड़ियाँ तैयार रखती है और आपके रास्ते में कांटे फैलाती है, और एक तरफ अबू जहल है जो आपके रास्ते में गड्ढे खोद देता है कि फजर के वक्त अगर ये सुबह में या जल्दी में निकले मस्जिद में तो ये इस गड्ढे में गिर जाए। इधर ये जहर लेके फिर रहे हैं। इतने मुश्किल हालात में क्या अल्लाह के नबी सल्लम के पास जवाज़ नहीं था कि इस काम को रोक दें, इस सिलसिले को रोक दें? मेरे हालात साजगार नहीं, मेरे हालात सपोर्ट नहीं कर रहे मुझको, सपोर्टिव नहीं है मेरे हालात। नहीं, याद रखिएगा, ज़िंदगी के अंदर जिन लोगों ने बड़े काम करने होते हैं वो अपने एडवर्स हालात के अंदर भी उस काम को करते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ ना होगा कि अल्लाह ताला किसी को एक नए सिरे से पैदा करे और कि अब तुम्हें कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई रुकावट नहीं, तुम्हें और कोई काम नहीं, तुम बैठ के बस मेरा काम करो। ये तो फिर मशीन हो गई। जैसे आप देखिए कि आप कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ आप उसको कोई रिजिस्ट नहीं करते, उसको एक काम दे दिया वो कर रही है, कोई उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनता। लेकिन इंसान में और मशीनों में यही फ़र्क है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने कुव्वत इख्तियार दिया है, इरादे के साथ कोशिश करके करो, फिर मुश्किल आए तो उस पर जम जाओ। जब अल्लाह के नबी के खिलाफ कोशिशों में लोग मुत्तहिद हो सकते हैं, तो आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले क्यों नहीं हो सकते? ये सवाल हम सबको अपने आप से करना है, और आज उम्मत मुस्लिमा को इन वाक़यात को सुनना है और सुनते हुए इस चीज़ का ख्याल करना है कि बिलफर्ज़, मैं सोचती हूँ कि अगर बिलफर्ज़ हो नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं, अगर अल्लाह के नबी सल्लम आज भी ज़िंदा होते हैं, जैसे लोगों का ख्याल है कुछ का कि अल्लाह के नबी ज़िंदा और वो ज़िंदा ही रहेंगे और ये और हर दौर में, अगर आज के दौर में नबी सल्लम मौजूद होते क्या हम मुसलमान उनका दिफा करने की पोजिशन में हैं या कर सकते? आप कहेंगे हाँ होते तो सही, फिर देखते हम क्या करते हैं, हम तो जान निछावर कर देते, मैं तो वहीं जाके बैठती। नहीं, आप देख लें अल्लाह के नबी के दीन का आज क्या हाल करें, उनकी हदीसों का आज क्या हाल है, उनके बोले हुए लफ्ज़ों का क्या हाल है, उनके दिए हुए तौर तरीके ज़िंदगी गुजारने, मरने, जीने, शादी, खुशी, गमी, उसी को देख लें। जो आज हमारा रवैया उनके साथ है, मन व अन वही हिस्सा हमारा उनके साथ होना था। क्यों? कि दिल नहीं बदला करते, हालात जैसे भी होते हैं उसके मुताबिक इंसान अपने आप को परखता रहे। आगे देखते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु चंद सहाबे कराम के साथ मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठे हुए आपस में जंगे बदर में कत्ल होने और गिरफ्तार होने वाले कुरैशियों के मुतल्लिक़ गुफ्तगू फरमा रहे थे, और वो इस मंज़र को भी याद कर रहे थे कि जो अल्लाह ताला के फजलो करम से मुहाजरीन और अनसार ने मैदान बदर में जवां मर्दी के जौहर दिखाए और अल्लाह ताला ने इनकी मदद फरमा कर इन्हें इज्जत बख्शी और इनके दुश्मन को जलील और रुस्वा और तबाहो बर्बाद किया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने उमेर बिन वहब को देखा कि वो अपनी सवारी से उतरकर गले में तलवार लटकाए मस्जिद की तरफ चला रहा है। ये घबरा कर उठे और फरमाया, अरे ये कमीना दुश्मन खुदा उमेर बिन वहब है, खुदा की कसम ये किसी बुरे इरादे से आया है। इसने मक्का में मुशरिकीन को हमारे खिलाफ भड़काया था। बदर से पहले ये हमारे खिलाफ जासूसी किया करता था, यानी CID करता था हमारी। फिर अपने साथियों से फरमाया, फौरन उठो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द घेरा बना लो और होशियार रहो, ये मक्कार धोखा न दे जाए। ये कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ये दुश्मन खुदा उमेर बिन वहब गले में तलवार लटकाए आपकी तरफ आ रहा है। मेरे ख्याल में इसका इरादा अच्छा नहीं, ये किसी शरारत की गरज से आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मेरे पास ले आओ। फारूक आजम ने बड़ी चाबक दस्ती, यानी बहुत क्विकली, तलवार का पट्टा इसकी गर्दन में डालकर फौरन इसे काबू कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसे इस हालत में देखा तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों से फरमाया, इसे छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर आपने फरमाया, उमर रजी अल्लाह अन्हों जरा पीछे हट जाओ। वो थोड़ा सा पीछे हट गए। फिर उमैर बिन वहब की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, उमेर करीब आ जाओ। वो करीब हो गया और अर्ज की, सुबह बखैर। ये जमाने जाहिलियत में अरबों का सलाम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमेर अल्लाह ताला ने हमें तुमसे बेहतर सलाम का तरीका बताकर हमें इज्जत बख्शी है। हम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और ये अहले जन्नत का सलाम है। उमर ने कहा, आपका सलाम हमारे सलाम से कोई ज्यादा मुख्तलिफ तो नहीं, लेकिन आप अपने मिशन में नए हैं। यानी बातें तो हमारी एक जैसी हैं, लेकिन आपका मिशन फ़र्क है हमसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमैर कैसे आए हो? अर्ज़ की, मैं अपना कैदी छुड़ाने के लिए आया हूँ जो आपके कब्ज़े में है, बराए मेहरबानी इसे छोड़ कर मुझ पर एहसान फरमाए। आपने दरियाफ़ फरमाया, तेरी गर्दन में ये तलवार क्यों लटक रही है? इसने अर्ज़ की, अल्लाह ताला ने इस तलवार का मुंह नाकारा कर दिया है। क्या आपने बदर के दिन हमारे पास कुछ रहने भी दिया है? यदि ये दिल जले की बातें, कटी हुई बात कर रहा है कि तलवारों से क्या होगा, हमारी तलवारें तो बेकार हो गईं जिस दिन आपने हमारे सरदारों को मार दिया, और इस तरह की बातें। आपने इरशाद फरमाया, उमैर सच बोलो, कैसे आए हो? इसने अर्ज़ किया, मैं तो इसी गरज से आया हूँ जो पहले आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। यानी सरासर झूठ बोल रहा है। आपने फरमाया, तुम और सुफवान बिन उमैया हतीम के पास बैठे क़लीब कुएं में फेंकी गई लाशों के मुतल्लिक बातें कर रहे थे। फिर तुमने ये कहा कि अगर मैं मकरूज और एयालदार न होता तो यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की मुहिम के लिए निकल पड़ता। फिर सुफवान बिन उमैया ने तेरे तमाम कर्जे और अहलो अयाल की किफालत की इस शर्त पर जिम्मेदारी कबूल की कि तू मुझे कत्ल कर दे, लेकिन अल्लाह ताला तेरे और इस घिनौने, यानी बहुत वर्स किस्म के मंसूबे के दरमियान हायल हो गया। उमैर ये सुनकर हैरान रह गए। फिर कुछ देर सोचने के बाद पुकार उठे, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर इसने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, जब आप हमें आसमानी खबरें बतलाया करते थे तो हम इन्हें तस्लीम नहीं करते थे, यानी हम नहीं मानते थे। हमारा ये ख्याल था कि आप पर कोई वही वगैरह नाजिल नहीं होती, लेकिन सुफवान बिन उमैया और मेरे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का तो हमारे अलावा किसी को इल्म न था। खुदा की कसम, अब मुझे यकीन हासिल हो गया कि ये खबर अल्लाह ताला ने आपको दी है। अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे आपके पास ले आया ताकि मुझे इस्लाम की हिदायत नसीब हो। फिर इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और मुसलमान हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबे कराम से इरशाद फरमाया, अपने भाई को दीन समझाओ, कुरान की तालीम दो और इसके कैदी को आज़ाद कर दो। तमाम सहाबे कराम हज़रत उमर बिन वहब रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम कबूल करने से बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो फरमाने लगे, जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की नीयत से आ रहा था तो मुझे बहुत बुरा दिखाई देता था, लेकिन आज इस्लाम कबूल करने के बाद ये मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यारा है। अल्लाह अकबर। तो ये था एक और टॉपिक, इसके अंदर हम इसको अनवान लिखेंगे और तरजीहात बदल गई। अब इस हिस्से में से हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, इंशाल्लाह हम फायदेमंद होंगी। यहाँ मैं पहला ही जो हिस्सा था कि जिसमें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ लोगों के साथ बैठे हुए बदर की बातें कर रहे थे, तो आपने महसूस किया कि वहाँ वो बैठे हैं तो वो अपने एंगल से बात कर रहे हैं काफिर, सुफान बिन उमैया और उमैर बिन वहाब, लेकिन सेम इंसिडेंट है और दूसरी तरफ मदीना में सहाबाए कराम जो है उसको अच्छे रंग में देखते थे। इससे क्या पता चलता है कि जब भी कोई अहम वाक्या होता है तो अमूमन लोग उसको डिस्कस करते हैं। अब देख ले खानदानी सतह में किसी की मंगनी हो जाए तो लोग जहाँ बैठते हैं खानदान के लोग बातें शुरू होते हैं, उसकी ये हुई अच्छा क्या होगा, जो खुश हो रहे होते हैं वो खुशी में करते हैं, जिनका इरादा था कि हम यहाँ करेंगे वो जल कुट के कर रहे होते हैं, देखो क्या जरूरत थी करने की और ये कोई तुक थी और ये कोई बात थी। फिर दूसरी बात आप देखिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबा के साथ बातें कर रहे हैं तो इसमें ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारी वजह से ये फतह हुई, बल्कि इस जुमले पे गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह के फजल से ही हुई, और एक बंदा मोमिन की यही शान है, जितनी बड़ी नेमतें मिल जाए अल्लाह ताला जो दुनिया में दे दे उसको रब की तरफ डाल दे, हाज़ा मिन फ़ज़्ली रब्बी, ये मेरे रब के फजल में से है। ठीक है, कोशिश उन्होंने की लेकिन पीछे से सबब अल्लाह ताला ने ही पैदा किया। फिर आप देखिए दूसरी चीज़ इसके बाद जो इसी हिस्से में देखने की थी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की फरासत, हुमैर को आता देख के ये नहीं कि कहा कि ये गलत इरादे से आया है, वो इरादा उसने बताया हुआ नहीं था, छुपाया हुआ था, लेकिन उनको पता चल गया कि ये किसी बुरे तरीके से आया है। इससे क्या पता चलता है, मोमिन के अंदर एक फरासत होती है, लोग उसको चीट करने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अंदर एक ऐसा फुरकान पैदा कर देता है कि दूसरों के दिलों में क्या है अल्लाह ताला उसकी खबर दे देता है। इसका ये मतलब नहीं कि गैब जानने लगता है मोमिन या बंदा मोमिन को अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कायम हो जाता है, नऊज़ु बिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ एक किस्म की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी एक शहर में बिल्कुल नए होते हैं तो आपको वहाँ की बड़ी बड़ी सड़कों के नाम तो याद होंगे लेकिन अंदर गलियों के नाम नहीं याद होंगे, इलाकों के नाम नहीं याद होंगे, लेकिन एक दूसरा शख्स है वो 10-20 साल से उसी शहर में और खोज लगा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उसको पता लग जाता है ना। इसी तरह वो लोग जो दीन को सतही सतह पे लेते हैं ना, ऊपर ऊपर रहते हैं या करीब नहीं जाते, उन पे दीन के अंदर के राज नहीं खुलते, उतार चढ़ाव, पेचो खम। जब इंसान सच्चे दिल से इखलास के साथ अल्लाह ताला के लिए काम करता है ना, तो एक वक्त आता है कि अल्लाह की मर्जी मालूम होने लगती है, एक वक्त आता है कि फिर इंसान को किसी से नहीं पूछना पड़ता, उसका दिल उसको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसी चीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में फरमाया कि फलाह पा गया वो शख्स जिसका दिल हक बात का मुहाफिज बना दिया गया। अल्लाह हमारे दिलों को ऐसा करते हैं, हक की मुहाफ़ज़त हो जाना ये फहमो फरासत के दरवाजे खोल देता है, हमारे दिल खोटे होते हैं, जब हमारे दिल के अंदर यानी बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं होती, अभी इखलास नहीं आया होता तो हम परेशानियों में मुबतला होते हैं, हमारे दिलों में कीने होते हैं, बुग़्ज़ होते हैं, हसद होते हैं, रकावटें होती हैं, हम दूसरों को देख के खुश नहीं होते, फिर ये पर्दे नहीं खुलते। तो हदीस क्या थी कि फलाह पा गया वो शख्स जिसका दिल हक बात का मुहाफिज बना दिया गया, हक की मुहाफजा। तो क्यों कि अमूमन दिल या नफ्स का हाल क्या होता है, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, कि नफ्स तो बुराई के ही हुक्म देता रहता है, और इसके अंदर किसी बंदे का दिल ऐसा हो जाए कि उसको अल्लाह ताला हक बात की मुहाफजत की तौफीक दे दे, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की शान है जिसको वो अदा कर दे। फिर दूसरी चीज़ इसमें एक और देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल, तलवार हाथ में है उसके, आ रहा है इरादों से बुरे, चले ठीक है ये पता चल भी गया था कि इसकी नीयत ये है तो आप खौफजदा होते, कोई बॉडी गार्ड अपने पास रखते, अपने हाथ में भी तलवार लेते, इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी पे भी बात पड़ती है कि आप कितने बहादुर थे कि आप दुश्मन को तलवार के साथ आता देख के भी परेशान नहीं हो रहे बल्कि मुतमईन बैठे हैं कि कोई बात नहीं इसको आने दो। और जिस शख्स का अल्लाह पे तवक्कुल हो जाता है उसकी यही कैफियत होती है। फिर वो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके कहते हैं बस जाओ। हमारा हाल कि हम कहते हैं अच्छा अल्लाह के सुपुर्द, और साथ फिर भी बस उसे कर रहे होते हैं। हम सुबह शाम कितनी दफा कहते हैं खुदा हाफिज। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या वाकई यकीन की हद तक ये कहते हैं कि तुम्हारा हाफिज खुदा है, कोई गम नहीं अब तुम्हें कुछ नहीं होगा? नहीं, ईमान और यकीन जितना पुख्ता होता है उतना इंसान के बोले हुए लफ्ज उसके दिल पे असर करते हैं। हम दिन में शायद 24 घंटों में से मेरे हाल 6-7 घंटे सिर्फ सुनी सुनाई बातें बोल रहे होते हैं। जो हम कह भी रहे होते हैं वो हमारा दिल की पुकार नहीं होती। वाजबत तो नमाज भी हम रस्मी पढ़ रहे होते हैं, जहन पता नहीं कहाँ खोया होता है और हम नमाज के लफ्ज अदा कर रहे होते हैं। नहीं, एक एक लफ्ज को सोच के बोले इंसान, ताकि उसको पता चले कि मुझे इसके बदले में या तो अच्छी बात मिलेगी या तो बुरी मिलेगी। फिर आप देखिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की नबी सल्लम के लिए मोहब्बत, ये भी इससे पता चलती है कि उनका अपना कोई लगी लिपटी बात नहीं थी या उनका अपना कोई इसमें मामला नहीं था, लेकिन नबी सल्लम के दिफा के लिए कैसे सहाबे कराम को भी कह रहे हैं कि आ जाओ और अल्लाह के नबी सल्लम का दिफा करो और आपको बचा लें। हालांकि हजरत उमर कितने स्ट्रांग थे, अगर उनके अंदर कोई तकाबुल होता। अब देखिए कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इंसान जब दीन से अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है ना, तो फिर दीन वालों से भी मोहब्बत होने लगती है। हमारे यहाँ क्या मामला होता है, अमूमन अमूमन ना कहें तो चलें कभी कभी, लेकिन फिर भी अक्सर देखने में आता है कि एक खास वक्त आता है कि फिर हम दीन से मोहब्बत के दावे के बावजूद दीनदारों से या दीन वालों से बुग़्ज़ रखने लगते हैं, लेट डाउन करने लगते हैं कि अब इनको कट ऑफ करो, खुद आगे आ जाओ, इनको पीछे करो हम आगे आ जाएंगे। ये वो छुपी हुई बातें हैं जो इंसान को खुद भी नहीं पता होती। अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अमल को देखिए, कितने मजबूत हैं, कुछ मौके पे अल्लाह के नबी सल्लम के सामने इख्तलाफ करते हुए भी दिखते हैं, जुरतमंद भी दिखते हैं, गैरत भी बहुत थी। एक लम्हे के लिए अगर उनके दिल में ये आ जाता कि ठीक है जाते हैं तो जाएं दुनिया से, कर लें, हम बन जाएंगे, हमें खलीफा बना दिया जाएगा, हम बड़े बन जाएंगे। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो अल्लाह के नबी ने ये फरमाया भी था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर नबी होता तो वो उमर तुम होते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक और भी कौल है अल्लाह के नबी सल्लम का कि हर उम्मत में कोई साहिब इल्हाम होता है, इल्हामी शख्स, यानी जिसको अल्लाह तआला की तरफ से इल्हाम होते हैं या वो अल्लाह तआला की बातों को अच्छी तरह समझता है, और हमारी उम्मत में उमर फारूक है। लेकिन अब देखिए कोई तकाबुल नहीं, दिफा कितना है, कितनी मोहब्बतें हैं। आज हम मोहब्बतों का नाम लेने वाले एक दूसरे पे मर मिटने की बातें करने के बावजूद भी हम बाज़ दफ़ा दिल से मुखलिस नहीं होते। हम फ़ायदा ले भी लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके लिए उस तरीके से सिंसियर नहीं होते, बल्कि यही सोचते हैं कि चलो ठीक है हम आगे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, जाता है कोई तो जाए। लेकिन जिनकी मोहब्बतें सच्ची अल्लाह के लिए होती हैं, फिर वो इंसानों में नहीं उलझते, वो शख्सियात में नहीं उलझते, वो अपनी ज़ात को बड़ा नहीं बनाना चाहते, उनको रब की बात को बड़ा बनाना होता है। फिर आप देखिए कि एक और कितनी प्यारी बात है कि जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने अपने तरीके से सलाम किया, सुबह बखैर, ऐसे जैसे कोई आपको गुड मॉर्निंग कह दे। अब अल्लाह के नबी सल्लम ने उसको वहाँ भी अपना इस्लाम पेश किया, उसको नहीं कहा तुम हो लेकिन बताया कि हमारा इस्लाम ये है। कितना प्यारा नुक्ता मिल गया कि अगर आज हम लोग भी किसी के साथ अगर मामला करें नॉन मुस्लिम से और वो हमें के, तो अगर वक्त हो और मुनासिब हो तो 2 मिनट खड़े होकर अपना इस्लाम बताइए, बहुत अच्छा है, गुड मॉर्निंग, बट यानी अपने इस्लाम में हम कैसे करते हैं ये बता देना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक छोटी सी चीज़ जो है वो किसी के दिल के अंदर इस्लाम की जगह बना सकती है। फिर आप देखिए कि उसने कितने खुले दिल से झूठ बोला ना, नबी सल्लम के सामने आके बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है कि मैं तो अपने कैदी को छुड़ाने के लिए आया हूँ, लेकिन दिल में उसके क्या था। फिर जब नबी सल्लम ने कहा कि ये तलवार क्यों लटक रही है, अब देखिए इससे नबी सल्लम की मामला फहमी भी देखिए। बस दफ़ा हमारे यहाँ समझा ये जाता है कि जो शख्स दीन पे आ जाता है वो बड़ा भोला, बड़ा सिद्धा, एक तसव्वुर भी यही दिया गया है, किसी को हम बहुत भोला देखें, बात नहीं करनी आती, अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं पता, लोगों से धोखे खा जाता है, तो हम कहते हैं ये तो बड़े सीधे हैं, ये तो बड़े सीधे साधे भोले भाले। नहीं, इस्लाम भोला भाला होना पसंद करता है, लेकिन कहाँ, अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने आके इंसान अपने आप को इतना टूटा हुआ महसूस करे, इतना गिरा हुआ महसूस करे कि जैसे उसकी अकल ही नहीं, अपनी अकल ना इस्तेमाल करे रब के हुक्मों के आगे। लेकिन बंदों के साथ वो समझदार होता है, जो कईस बंदा है मोमिन की पहचान के वो कईस होता है, आप इंग्लिश में कहेंगे तो जीनियस, टू मच अंडरस्टैंडेबल, इतनी ज़्यादा उसको समझदारी होती है कि लोग उसको डिफीट नहीं कर सकते, लोग उसको चीट नहीं कर सकते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कहने की कोशिश की कि ये तलवार है और इसका क्या फायदा है, लेकिन आप देखिए कि आप उसकी हालत से बता रहे हैं। यहाँ से एक और भी बात पता चली कि बाज दफा इंसान जो कह रहा होता है जुबान से, उसके अपने हालात या उसकी एक्टिविटीज या उसकी हरकतें ही बता रही होती हैं कि वो झूठ बोल रहा है। जिंदगी में कितनी दफा ऐसा होता है, और आप देखिए कि मैंने महसूस किया है कि खानदानी मामलात में तो ऐसा बहुत ही होता है। हम जुबान से जाते हैं, चलो उनको घर की मुबारक दे आए, घर ले लिया या शादी होगी, चलो और रिश्ता हो गया मुबारक दें, और वो मुबारक देते हुए भी हमारे माथे पे शिकने होती हैं और दिल अंदर से कटे फटे होते हैं कि हो क्यों गया ये रिश्ता। और कुछ भी ना हो ना, यानी ये भी ना हो कि इधर नहीं हमारा होना था, सिर्फ उस वक्त ये गम हो जाता है कि हमारी बच्ची का अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसका हो गया मेरी बच्ची का क्यों नहीं हुआ, अच्छा इन्होंने घर ले लिया मेरा नहीं हुआ। हम फैमिली के साथ मुबारक देने जाते हैं कि खुश होंगे, और रास्ते में अपने मियाँ से लड़ रहे होते हैं, उनसे तो घर बना लिया तुम्हें अभी तक तौफीक ना हुई। हम अफसोस करने के लिए मैयत वाले घर में जाते हैं, और रास्ते में हम पूरा बातें कर रहे होते हैं और उनकी ज़िंदगी की बातें और जो गिले शिकवे, और वहाँ जाते ही हम क्या करने लगते हैं। इसको ख़त्म करना है हमने इंशाल्लाह ताला, अपनी ज़िंदगी से इस तजाद को ख़त्म करना है। देखिए नहीं बोलना तो चुप रहे, इस कहानी से पढ़ते हुए ये लिखिए कि कहीं दिल साथ नहीं दे रहा ना लफ्जों का, खामोश रहिए, क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक चीज अच्छी नहीं लगी मत कहें कि अच्छी लगी, खामोश रहें, बड़बड़ के बात करने की क्या जरूरत है। किसी के लिए दिल में बहुत मोहब्बत नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लेट हिम गो, नहीं तो ना सही, चुप रहे, कोई क्या कहेगा आपको। आप झूठ बोल के अपने सर पे एक मुसीबत ले लेंगे कि जो बाद में फिर आपको अल्लाह ताला की नजरों में गुनाहगार भी करेगी। फिर इसके बाद आप देखिए कि आखिरी हिस्से से हमें ये पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लम ने पूरी वो बातें उसको बता दी। मैं इनको पढ़ते हुए सोच रही थी कि उमैर को तो इस बात से यकीन आया ही था कि अल्लाह के नबी हैं, क्या हमारे ईमान में इजाफा नहीं हुआ इस बात को सुन के। ना टेलीफोन, ना पेजर, ना उस वक्त कोई इंटरनेट, ना ईमेल, और एक शख्स 500 मील दूर बैठे शख्स की बातें उसको एक एक लफ्ज़ में बता दे, और हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी ने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त कही और अल्लाह ताला ने ही उनको खबर दी। तो ये भी एक आपकी नबुवत की दलील बनी। फिर इसके बाद एक चीज़ जिस पे आपने गौर किया, और वो क्या है कि जब वो मुसलमान हो गया तो उसके बाद नबी सल्लम ने क्या कहा, अपने भाई को दीन समझाओ, कुरान की तालीम दो, और इसके कैदी को आज़ाद कर दो। आया कैदी को आज़ाद करवाने नहीं था, इस्लाम मिला कैदी आज़ाद हो गए। इस नुक्ते पे गौर कीजिएगा, आप अल्लाह के हो जाएं अल्लाह आपका हो जाएगा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, हो सकता है कैदी आज़ाद करवाने आता तो ना मिलता। इससे क्या पता चलता है कि दीन के रास्ते में आए तो दुनिया भी मिलती है। नोट करें ये पॉइंट्स, आपके दिल बड़े होंगे जो बहुत सारी कुर्बानियां दे के यहाँ आके बैठते हैं। हम समझते हैं कि दीन की तरफ आएंगे तो दुनिया बिगड़ जाएगी, बिगड़ती नहीं है, बनती है, दुनिया तो रास्ते में पड़ी भी मिल जाती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लम ने उसके दीन की फिक्र की, इससे क्या पता चलता है कि किसी का इस्लाम कबूल कर लेना ही काफ़ी नहीं जब तक कि उसको फिर आगे इल्म न दिया जाए। हमारे यहाँ अमूमन जो लोग कन्वर्ट होते हैं उसके बाद कुछ ज़्यादा इख्तमाम नहीं देखा गया कि उनके मुसलमान होने के बाद किया जाए, तो ये लाजमी जिम्मेदारी है। फिर आप देखिए कुरान की तालीम की बात की, ये नहीं कहा कि बैठ के इसको कुछ फिकही बातें सिखा दो, कुछ मसाइल सिखा दो, बल्कि डायरेक्ट कुरान पे ले आओ। इससे अमल की बात निकली कि आज अगर हम भी किसी को कन्वर्ट होता हुआ देखें, मुसलमान होता है, तो उसको सबसे बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज कुरान है। बाज़ लोग आते हैं और पूछते हैं क्या दें, कोई ऐसी दें जिसमें मसाइल हों, ठीक, अच्छी बात है, एक छोटी सी हैंडबुक्स बहुत सारी अच्छी मिलती हैं जो बेसिक बिलीव्स और इन चीज़ों को देती हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करती हूँ अपनी ज़ात के हिसाब से या मुझे जो अच्छा लगता है, मैं उनको कहती हूँ कि उनके लिए कुरान की टीचिंग के अहतमाम करते हैं। शॉर्ट वर्जन में एक जस्ट टू दी पॉइंट कुरान की तफसीर उनको सुनवा दें, कोई तर्जमे के साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन से सुनवा दें, जो उसे दिल खुलेगा ना वो वैसे नहीं होता। क्योंकि आप देखिए कि इस्लाम की तरफ आने वाला आ तो चुका होता है, लेकिन अभी अंदर टमटमाते हुए शोले हैं। जैसे शुरू में आप देखिए कि जब आग लगाते हैं मोमबत्ती को, तो शुरू में लगता है पता नहीं जलेगी कि बुझेगी, आप थोड़ी देर वेट करते हैं तीली हाथ में लेके जलती हुई कि शायद दोबारा लगाना पड़े उसको, ये लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर हम एकदम इनको मसाइल ही बताते जाएंगे ना, तो मसाइल तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ मुसलमान होने के बावजूद भी प्रैक्टिसिंग नहीं रहते कुछ सालों के बाद। क्यों? दिल नहीं नरम हुए। आप कुरान देंगे, दिल नरम करेंगे और तरतीब से यही सूरह फातिहा आप देखे पड़ेगा, गैर अल मखदूबी अलैहिम वलद्दालिन, दिल बदलेगा ना कि अल्लाह ने मुझे बदल दिया। सूरह बकरा में ज्यूस के व्यूज और उनकी जिंदगी पड़ेगा, सूरह आले इमरान में पड़ेगा, उसका दिल जमता जाएगा, जमता जाएगा कि अल्लाह ताला ने मुझे अंधेरों से रोशनियों की तरफ ले गया। फिर इसी तरह आगे देखते हैं अगले हिस्से में क्या बात है। हजरत उमर बिन वहाब रदी अल्लाहु अन्हो इस्लामी तालीमात से फैजयाब तो हो रहे हैं और अपने दिल को नूरे ईमान से मुनव्वर कर रहे थे, और अपनी ज़िंदगी के इन खुशगवार दिनों में मक्का और मक्का में रहने वालों को भूल चुके थे। ये देखिए कि यहाँ आए तो यहीं के होके रह गए, वापस जाने को दिल ना चाहा। उधर सुफवान बिन उमैया बड़ी बेचैनी से मुंतजर था और वो पुरुमीद था कि कोई खुशगुन खबर मिलेगी। जब भी वो किसी मजलिस के पास से गुजरता तो बरमला यानी खुल्लम खुल्ला कहता, कुरैशियो खुश हो जाओ, तुम्हें अनकरीब एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो वाकया बदर की संगीनियों को भुला देगी। फिर सुफान बिन उमैया के लिए इंतज़ार की घड़ियाँ तवील तर होती चली गईं। इसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता बेचैनी सिरायत करने लगी। वो इस कदर इस्तराब और कुलक यानी बहुत ज्यादा बेचैन हुआ मैं मुबतला होकर पहलू बदलने लगा, जैसे कि अंगारों पर लेटा हुआ हो। वो मदीना मुनव्वरा से आने वाले हर मुसाफिर से पूछता कि उमैर कहाँ है, लेकिन कोई भी शख्स उसे तसल्ली बख्श जवाब न देता। लेकिन एक मुसाफिर ने उसे ये बात बता दी कि हजरत उमैर रजी अल्लाह अन्हो मुसलमान हो गए। ये खबर इस पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसे पुख्ता यकीन था कि उमर रजी अल्लाह अन्हो मुसलमान नहीं हो सकता, ख्वाह सारी दुनिया मुसलमान हो जाए। तो इस हिस्से का उन्वान क्या है, और उमर मुसलमान हो गया, ये खबर सच थी। यहाँ देखिए कि जो बात थोड़ी सी हम इसमें अब देखते हैं अमल के लिए कि हजरत उमर जो थे फिर जब आए कुछ और करने थे, लेकिन जब दीन मिला तो पिछली सारी चीज़ें भूल गई, सब छोड़ छाड़ के घर बार बच्चे कर्ज भूल गया, अहल वयाल की फिक्र भूल गई और नूरे ईमान से अपने आप को मुनव्वर करने लगे। इससे क्या पता चलता है कि जब एक दफ़ा सच्ची समझ आ जाती है ना इंसान को दीन की, तो फिर उसके बाद ये रास्ते की रुकावटें पाँव नहीं पकड़ती। जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, उनकी जंजीरें कटी और वो फिर अल्लाह के दीन को सीखने लगे। उधर आप देखिए सुफान बेचारे के साथ क्या मामला हुआ, शीहियाँ बिगाड़ रहे कि अभी देखना खबर आएगी, क्योंकि किसी मिशन पे भेजा हो तो फिर इंसान इंतज़ार भी इसी तरह करता है। लेकिन बाद में पता क्या चला कि वो मुसलमान हो गए। हजरत उमैर बिन वहब रजी अल्लाह अन्हो मदीना मुनव्वरा में बड़ी मेहनत से दीनी तालीम हासिल करते रहे और कुरान मजीद का कुछ हिस्सा भी जुबानी याद कर लिया। उन्होंने एक दिन नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अकदस में हाजिर होकर अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती दिन इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए सर्फ कर दिए थे यानी इस्तेमाल कर दिए थे, जो भी इस्लाम कबूल करता मैं उसे तरह तरह की तकलीफ़ पहुंचाता। अब मेरी दिली तमन्ना है कि आप मुझे मक्का मौसमा जाने की इजाज़त इनायत फरमाएं, ताकि मैं कुरैश को दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दूँ। अगर वो मेरी बात तस्लीम कर लें तो बेहतर, वरना मैं इन्हें इसी तरह दर्दनाक अजियत दूंगा जिस तरह के आपके सहाबा कराम को अजियत दिया करता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दे दी। आप अपने दिल में बड़े अरमान लेकर मक्का मुअज्जमा पहुँचे और सीधे सुफवान बिन उमैया के घर तशरीफ़ ले गए और इरशाद फरमाया, ए सुफवान, तुम एक दानिशमंद सरदार हो, भला ये तो बताओ कि जिन पत्थर के बुतों की तुम पूजा करते हो और इनके नाम पर कुर्बानी देते हो, क्या तुम्हारी अकल तस्लीम करती है कि ये तुम्हें कोई नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? सुन लो, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजरत उमैर बिन वहाब बड़ी मेहनत से अहले मक्का को दीन की दावत देने के लिए दिन रात मसरूफ हो गए। बहुत से लोगों ने इनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ताला उमैर बिन वहब को अजरे जजील अता फरमाए और इनकी कब्र पर अपनी मुसलसल रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। ये था आखिरी हिस्सा, इसका उन्वान क्या है, और पीछे वालों की फिक्र हुई। यहाँ आप देखिए कि वही दोस्त है, लेकिन अब कहाँ इस्लाम के खिलाफ बातें थी, इस्लाम के कायद को ख़त्म करने की नीयत थी, और यहाँ आके अब उसी इस्लाम की दावत दी गई। हमारे लिए अमल की बात क्या है कि जब अल्लाह का दीन हमें अच्छा लगे तो फिर हमें दूसरों तक भी उस दीन को पहुंचाना है, उनकी भी फिक्र करनी है। फिर इसी तरह आप देखिए, हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह अन्हों ने सुफयान बिन उमैया जो दोस्त था काफिर में, तो उसको छोड़ा नहीं, ये नहीं कहा कि अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि उससे मिल के और उसको कितनी प्यारे तरीके से तबलीग करते हुए दिख रहे हैं कि देखो पत्थर के बुतों की तुम पूजा करते हो। असल बात यह है कि जिन लोगों के बारे में हम ये सोचते हैं कि वो दीन पे नहीं आ सकते और बड़ा मुश्किल है, बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल नहीं होता, बात हमें करने की, अल्लाह ताला अगर समझ दे दे और तरीका दे दे। तो ये थी एक सच्ची कहानी, एक किरदार जो हम सब के लिए एक मिसाल बन के सामने आता है कि हमारी ज़िंदगी की तरजीहात कब बदलेंगी और कैसे हम इस काम पे अपने आप को तैयार करेंगे और क्या वाकई हमने इससे कुछ सीखा।
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन पे आने से दुनिया खुद ब खुद मिलती है, और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम दुनिया के पीछे जब हम भाग रहे होते हैं ना, तो ये दुनिया हमारे आगे भाग रही होती है, लेकिन जब हम दुनिया छोड़कर दीन की तरफ आ जाते हैं तो फिर ये दुनिया हमारे पीछे भागती है। अक्सर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ।
जज़ाकअल्लाह खैर। आप देखिए कि इन्होंने दुनिया के भागने की बात की, तो इसमें थोड़ा सा ऐड अप करवाऊं कि जैसे कभी आप लोगों ने तितली पकड़ी है, बटरफ्लाई अब कहाँ पकड़ते हैं, अब तो लोग म्यूजियम्स में जाके ये चीज़ें देखते हैं, लेकिन आप देखें कि जब आप बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो आपके हाथ में नहीं आती, आप उसके पीछे वो आगे, वो पीछे आगे, फिर आप थक जाते हैं, कहते हैं नहीं तो ना से, आप आके आराम से बैठ के अपना काम करते हैं और वही उड़ती उड़ती आके आपके हाथ पे बैठ जाती है, वो समझती है आप भी कोई ऐसी बेजान चीज़ है और आपके हाथ में आती है। यही हाल दुनिया का है, आप इसके पीछे पीछे, ये आपके आगे आगे, आप बैठ जाएं आराम से, ये खुद आएगी आपके हाथों के ऊपर आके बैठेगी इंशाअल्लाह ताला। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।